बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सुबह ज़िंदगी में आपको बहुत बहुत खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल खैर खैरियत होंगे। आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ।
वालेकुम अस्सलाम खुर्रम, और हम भी अपने अज़ीज़ नाज़रीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करते हैं और बहुत बहुत आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं 16-17 दिन गुजर चुके हैं माह मुबारक रमज़ान के, और बहुत मुश्किलों से बाज़ लोगों के लिए गुजर रहे हैं ये दिन। लेकिन जो लोग वाकई जिनको खुदा ने तौफीक दी है इबादत करने की, सिर्फ सुबह से लेकर शाम तक, यानी सिर्फ सुबह से सुबह को शाम नहीं करते बल्कि इसका भरपूर फ़ायदा उठाते हैं, इस एक महीने का भरपूर फ़ायदा उठाते हैं, वाकई हम लोगों को तो गिबता होता है उन लोगों।
बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात की आपने हसन, और इसको दूसरी तरीके से मैं इस तरह बयान करूँ। हमारे प्रोग्राम में एक बार पहले इस पर बात हुई थी, वो ये कि ऐसी इबादत जो थोड़ी सी सख्त होती हैं, एक वक्त ऐसा पहुंचता है कि जब इंसान का ईमान इतना मजबूत हो जाता है कि उसको उन सख्तियों में मज़ा आना शुरू हो जाता है। यानी वो भूखा रहना, रोज़ा जब वो रखता है तो उसकी वो लज्जत उसको आनी शुरू हो जाती है और उसको मज़ा आना शुरू हो जाता है। तो हम दुआ करते हैं हम सब उस लेवल पर पहुँच जाए
इंशाल्लाह। तो अभी हम लोग कहाँ चलेंगे?
हम लोग चलेंगे आज के दिन की दुआ मुलायजा फरमाएंगे, यानी आज का रोज़ा जो है उस दिन की दुआ मुलायजा फरमाएंगे और उसके
बाद मुलायजा फरमाएंगे।
बिल्कुल मुलायजा फरमाएंगे, आप लोग भी हम लोग भी सारे मिलके मुलायजा करते हैं और उसके बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिए, खुशामदीद आपको कहते हैं एक बार फिर प्रोग्राम सुबह ज़िंदगी में, और 7:34 तेहरान टाइम के मुताबिक हो रहे हैं, हम लोग आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ये बताता चलूँ कि हमारे हफ्ते का मौजू चल रहा है शबे कद्र के सिलसिले में। शबे कद्र माह रमज़ान का दिल है, ये मौजू है हमारे हफ्ते का, और इसमें आप लोगों का साथ हमें ज़रूर चाहिए।
तो हम लोगों का साथ ज़रूर दीजिएगा। हम लोगों का फेसबुक पेज मौजूद है facebook.com/scutmorningshow। इसके ऊपर आप हम कमेंट भेज सकते हैं, कोई क्लिप वो भेजना चाहें वो भेज सकते हैं, मेरा मुख्तलिफ चीज़ें शेयर कर सकते हैं।
बिल्कुल, तस्वीरी मुकाबला हम लोगों का चल रहा है फेसबुक पे माह रमज़ान के सिलसिले में, और अपनी तस्वीरें जो आप लोगों ने खुद खींची हैं अफ्तार की, सहरी की, माह रमज़ान की खातिर ख़ास रसूमात आपके इलाके की, वो हमें भेजें, और इंशाल्लाह इस महीने के आखिर में ईद के दिन हम लोग कुरानदाजी करेंगे और 3 खुश नसीब जो लोग हमारे साथ शिरकत करेंगे इस मुकाबले में उनको इनाम आते हैं
इंशाल्लाह। अभी तक तो सिर्फ एक ही अपने हमारे भाई जो हैं वो भी भेज रहे हैं, तो
अच्छा,
वो हुआ तो उन्हीं का नाम 3 बार डालेंगे फिर उनको 3 बार
तीन इनाम उनको मिल जाएंगे
बहरहाल।
ये मुझे नहीं पता ये पॉलिसी हमारी क्या है, 3 इनाम उन्हें मिलेंगे या एक मिलेगा,
दो हम लोग अपनी जेब से देने पड़ेंगे लेकिन हम लोग खुश देंगे।
तो
अभी कहाँ जाना है,
आपके मेहमान कौन है?
हाँ, अब मेहमान के बारे में तो हमने बताया ही नहीं। आज हम बहुत ही अहम मौजू लेकर आए हैं आपकी खिदमत में। आज हम बात करेंगे जो सॉफ्ट वॉर है, एक नया लफ्ज़ है शायद कह सकते हैं आजकल की दुनिया में, इसके हवाले से इंशाल्लाह आपको मालूमात फराहम होंगी। तो यूसुफ़ रज़ा साहब हम लोगों के साथ मौजूद होंगे थोड़ी देर में स्टूडियो के अंदर।
बिल्कुल, और मेरे साथ इंशाल्लाह स्काइप इस्लामाबाद स्टूडियो से मलिक गज़नफर साहब, एमए उर्दू हैं, शायर भी हैं, और उनसे इंशाल्लाह हम लोग हफ्ते मौजू पे बात करेंगे कि माह रमज़ान के आम लोगों पर क्या असरात होते हैं और क्या उसके मुफीद असरात हैं, इस सिलसिले में इंशाल्लाह उनसे हम गुफ्तगू करेंगे।
तो चलते हैं एक और दुआ देखते हैं माह मुबारक रमज़ान की, फिर उसके बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।
हाजिर आप लोग की खिदमत में हाजिर है तेहरान स्टूडियोज से, और प्रोग्राम सुबह ज़िंदगी आप लोग मुलायजा कर रहे हैं, इंशाल्लाह प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाएंगे। वक्त हुआ है हमारे गुफ्तगू के हिस्से का, और जहाँ पर हसन हमारा इंतज़ार कर रहे हैं तो चलते हैं हसन के पास, और हसन आपके पास कैमरा आ जाएगा अभी और आप गुफ्तगू आगाज़ कर सकते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम, और नाज़रीन हम आपकी खिदमत में अर्ज़ करते चलें कि आज कल मुख्तलिफ जो हम लोगों ने, अगर याद हो यूसुफ़ रज़ा साहब के साथ हम लोगों ने गुफ्तगू की थी हॉलीवुड के बारे में, मुख्तलिफ फिल्मों के बारे में, कैसे ये सब बनना शुरू हुई और इनके मकासद क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इकट्ठा की, और फिर आज एक और अहम मौजू पर हम लोग गुफ्तगू कर रहे हैं जो इसी तसलसल में है, और उसे आजकल के दुनिया में सॉफ्ट वॉर कहा जाता है। वैसे अगर आम हालात में आप किसी मगरब ज़्यादा सियासतदान या बज़ाहिर जो जिन्हें कहा जाता है बहुत ही रोशन फिक्र, जिन लोगों को कहा जाता है खुले जहन वाले लोगों को जो ख़ुद को कहते हैं, उनसे पूछे तो वो इसके कायल ही नहीं होते कि ऐसी कोई चीज़ है। लेकिन आजकल की दुनिया में ये चीज़ देखी जा रही है, महसूस की जा रही है, और उसे हत्ता आप करीब से यानी महसूस कर सकते हैं। यानी अगर मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई चीज़ जा रही है, मुख्तलिफ फिल्में बन रही हैं, मुख्तलिफ सीरियल्स ऐसे बन रहे हैं कि हमारे तमाम अकदार को निशाना बनाए हुए, तो यकीनन एक ऐसी जंग जारी है जो हम लोगों को पता भी नहीं चल रहा है, बज़ाहिर हमारे गोलियों में नहीं लग रही लेकिन हम लोगों की सारी फिक्र तब्दील हो रही है, हमारे नौजवानों की फिक्र तब्दील हो रही है। इसके बारे में इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त यूसुफ रजा साहब मौजूद हैं स्टूडियो में हमारे साथ, खुश आमदीद कहता हूँ, सलाम अर्ज करता हूँ आपकी।
वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपने दोबारा दावत दी अपने इस प्रोग्राम में, और आज आपके इस प्रोग्राम के तवसल से बहुत सारी दुआएं भी माशाल्लाह सुन ली हमने। नहीं, बहुत शुक्रिया। मौजू जैसे आपने बताया कि बड़ा अहम मौजू, सॉफ्ट वॉर या जंग नर्म भी कहते हैं इसको, या सकाफती अलगार भी इसका एक नाम है। तो पहले हमने जिस तरह बात की प्रोपेगेंडा के हवाले से, आज एक नई जहत से इस पर थोड़ी सी रोशनी डालने की कोशिश करते हैं कि दरअसल सकाफती अलगार है क्या चीज़, सकाफत ख़ुद क्या है, यानी कल्चर क्या चीज़ होती है। यूँ तो इस पर बहुत सारी तारीफ़ें मौजूद हैं मुख्तलिफ एंगल से, मुख्तलिफ जावियों से, लेकिन एक अगर मैं अपनी जो बताने की कोशिश करूँ कि मैं इसको किस तरह समझाऊँ आसान अल्फाज में, वो ये है कि किसी भी माशरे की तारीख, उसका तमद्दुन, उसके रस्म व रिवाज, अखलाक, उसकी कुल्ली जो एक फ़िक्र होती है इज्तमाही फ़िक्र, उसकी ज़बान, उसकी इकदार, ये सारी चीज़ें मिल के इनसे एक चीज़ निकलती है जिसको आप कल्चर कहते हैं या सकाफत कहते हैं, जिसको आप एक लफ्ज़ में लाइफ स्टाइल भी कह सकते हैं। खूब, अब हम यहाँ पर लफ्ज़ जो इस्तेमाल कर रहे हैं सकाफती अलगार, तो ये क्या है सकाफती अलगार? जो स्कॉलर्स हैं, दानिश्वर हैं, उनकी नज़र में तीन चार किस्म की जंगें होती हैं। एक जंग वो होती है जो हम देखते हैं कि फ़ौजों के माबैन होती है बॉर्डर्स के ऊपर, बहुत वाजे होती है, नज़र आ रही होती है। एक इकतसादी जंग है कि सैंक्शंस लग गई ममालिक पे, और वो अब हम सब उससे बखूबी वाकिफ़ हैं। उससे भी एक जंग जो है सियासी बरतरी हासिल करने के लिए होती है, एक जंग जो है वो ये सकाफती अलगार है। इसके अंदर हदफ क्या होता है? इसके अंदर हदफ ये होता है कि एक दुश्मन दूसरे की इकदार को बदलने की कोशिश करता है, उसके कल्चर को बदलने की कोशिश करता है। वो ऐसा क्यों चाहता है? वो ऐसा इसलिए चाहता है कि अगर वो इस अपने हदफ में कामयाब हो जाए कल्चर को बदलने के, उसकी सकाफत, तो उसका वो पूरा लाइफस्टाइल बदल सकता है। और एक बार अगर किसी की सकाफत उससे जुदा कर दी जाए तो एक चीज़ कहलाती है आइडेंटिटी क्राइसिस। वो किसी इंसान के साथ भी हो सकता है, किसी कौम के साथ भी हो सकता है। तो अगर उसको अपना यानी कल्चर से डिटैच कर दिया जाए इंसान को, और वो उस आइडेंटिटी क्राइसिस में आ जाए, उसके बाद उसको जो भी पढ़ाया जाएगा वो उसको बावर कर लेगा, उसको कबूल कर लेगा। तो इसलिए इंतहाई अहम नुक्ता है, ये इंतहाई अहम वॉर है। जिस तरह आपने अभी ज़िक्र किया कि इस सबसे ज़्यादा ख़तरनाक वॉर है ये, अगर हम इन चारों जंगों के उसमें देखें तनाजुर में, क्यों? क्योंकि ये वो जंग है कि जिसमें महसूस ही नहीं होता कि आप जंग के अंदर शामिल हैं, आप निशाना बन रहे।
अच्छा, इसमें एक चीज़ मैंने कही, और अब तक काफ़ी लोगों से जो खुद मग़रब से मुतासर होते हैं, मशरक आलम मशरक में इस तरह के लोग ज़्यादा होते हैं, वरना खुद मग़रब में दूसरी चीज़ दिखाई दे रही है कि एक वहाँ पर भी इनकलाब आ रहा है वाकई इन चीज़ों को शिनाख्त हासिल करने का। क्यों हमारे सियासतदान यानी जो मग़रब से मुतासर हैं, या हम लोगों के दानिश्वर हजरात, हम लोगों के स्कॉलर हजरात, वो क्यों इस मसले को मानने के लिए तैयार नहीं है?
इसकी एक वजह ख़ुद वो यही है कि वो ख़ुद सकाफती अलगार का शिकार हुए हैं। वो इसको मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि ऐसा हमारे साथ कुछ हो रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी आइडेंटिटी लॉस का शिकार है हमारे लोग। जो आपने जिस तरह बताया दानिश्वर हजरात, उनकी खुद जो है वो जिसको आप कहते हैं जड़ या रीशा, वो खुद कहीं और है, वो खुद गर्ब के अंदर मौजूद है। तो इसलिए इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं होते। आपने मग़रबी दानिश्वर की बात की, उससे एक बात मुझे याद आई। एक मग़रबी दानिश्वर 19वीं सदी के बहुत मशहूर हर्बर्ट स्पेंसर, वो अपनी किताब में लिखते हैं कि जो हमारे यानी अपने बरतानिया के कौम से और अपने सियासतदानों से मुखातिब हैं, और कहते हैं कि हमारे जो इखलाक हैं, कुल्ली जो हमारी रस्म रिवाज, तमद्दुन, ज़बान, ये सब जो चीज़ें हैं, ये अपनी जो क्या नाम है ज़ेर तसल्लुत जो आबादियाँ हैं हमारी, उनको और दूसरे ममालिक को आप ये सिखाएं और उनको उनके हाल पे छोड़ दें, वो ऑटोमेटिकली आपके बन के रहेंगे, आपके ग़ुलाम होकर रहेंगे। और मेरे ख्याल कोई ऐसी ढकी छुपी बात नहीं, हम ये देख रहे हैं, हम खासकर सब कॉन्टिनेंट के अंदर ये देख सकते हैं कि किस तरह आज भी हम, जैसे आपने खुद बोला, हमारे बड़े बड़े दानिश्वर जो हैं वो फिक्री गुलामी का शिकार है, उसकी वजह यही है।
बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ रजा साहब, इंशाल्लाह गुफ्तगू हम लोगों की जारी रहेगी। चलते हैं खुर्रम के पास।
बहुत शुक्रिया हसन जी, आप लोगों की गुफ्तगू जारी रहेगी। और वक्त हुआ है हमारे पास तेहरान में एक टिप से मुतालिक मेडिकल से जुड़ा हुआ एक तहकीकाती मरकज़ है, और जिसका नाम पास्टर है, उसके बारे में एक हम लोगों ने रिपोर्ट आप लोगों को पिछले हफ्ते भी दिखाई थी, और उसका दूसरा हिस्सा आप लोग अभी मुलाहजा करें।
بدقسمتی سے دنیا میں 10 لاکھ افراد مختلف بیماریوں اور مناسب علاج نہ ہونے کی وجہ سے ہلاک ہو جاتے ہیں، جو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت بڑی تعداد ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ ہیلیکوبیکٹر ایک گرام نیگیٹو مائکروفالک بیکٹیریا ہے۔ یہ پیچیدہ قسم کا جرثومہ پیٹ کی تیزابیت میں زندہ رہتا ہے اور پیٹ کے السر سے لے کر گیسٹرک کینسر تک اور اسی طرح کی دوسری بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے آدھے سے زیادہ لوگوں میں ہیلیکوبیکٹر پایا جاتا ہے، لیکن خوش قسمتی سے بہت کم لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ دوسری عالمی جنگ کے خاتمے کے بعد اس انسٹیٹیوٹ کی نئی بلڈنگ کا افتتاح ہوا اور آہستہ آہستہ یہ ادارہ پبلک ہیلتھ کنٹرول سینٹر میں تبدیل ہو گیا۔ یہ انسٹیٹیوٹ عالمی ادارے صحت سمیت متعدد عالمی اداروں کے ساتھ قریبی تعاون کر رہا ہے۔ پاسچر انسٹیٹیوٹ آف ایران نے ہر ضروری موقع پہ ایرانی عوام کی بھرپور خدمت کی ہے، خاص طور سے بحرانی حالات میں، اور آج یہ ادارہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے، جس سے ہمیں عشق بھی ہے اور ہم اس پر فخر بھی کرتے ہیں۔
جی ناظرین، آپ لوگوں نے رپورٹ ملاحظہ فرمائی، امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ وقت ہوا ہے دوبارہ گفتگو کے حصے کی طرف لوٹنے کا، حسن کے پاس چلتے ہیں۔ جی حسن،
بہت بہت شکریہ خرم۔ بات چل رہی ہے سافٹ وار کے حوالے سے، نرم جنگ، اور آج کل کے دنیا میں زیادہ کامیاب یہی جنگ ہے۔ ویسے یہ جنگ لڑی کیسے جاتی ہے؟
اس کے جو مین ٹولز ہیں وہی ہیں، میڈیا اس کا سب سے بڑا ٹول ہے، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، اور ایک ڈیجیٹل میڈیا ہو۔ ہم ڈیجیٹل کو الیکٹرانک سے علیحدہ دیکھتے ہیں، جو ہماری ساری سائبر وار جس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک جو سب سے قدیمی جو اس کا ٹول ہے وہ ورڈ آف ماؤتھ ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ یعنی جہاں لوگ ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کر کے اس چیز کو پھیلاتے ہیں۔ ہم اگر اس تناظر میں، ورڈ آف ماؤتھ کے تناظر میں دیکھیں، تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ تاریخ میں انبیاء کے خلاف بھی یہ جنگ لڑی گئی ہے، اور اس میں بھی نعوذ باللہ ان کے خلاف تہمتیں لگائی گئیں کہ یہ نعوذ باللہ دیوانے ہیں، یہ شاعر ہیں، یہ مجنون ہیں، یہ جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ انبیاء پہ۔ تو یہ بہت نئی چیز نہیں ہے، بہت پرانی چیز ہے۔ البتہ اس کے طریقے، جیسے آپ نے پوچھا کہ کس طرح لڑی جاتی ہے، اس کے طریقہ کار آہستہ آہستہ جو ہیں وہ بدلتے چلے جا رہے ہیں۔ خوب، اگر ہم دیکھیں اس کو الیکٹرانک میڈیا میں آ کے دیکھیں، اور اپنی گفتگو کو تھوڑا سا فوکس کریں، اور دوبارہ ہالی ووڈ کی طرف چلتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ اس کے کیا اثرات رہے اپنے ہی معاشرے پہ۔ ہم باہر کے معاشروں کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے وکٹم جو ہے، مظلوم جو ہے، ان کا اپنا معاشرہ ہے۔ خود امریکی معاشرہ، امریکی عوام مظلوم ہے، کہ کس طرح ان کی اقدار کو تبدیل کیا گیا اس سافٹ وار کے ذریعے۔ 1918 میں ٹارزن آف دا ایپس آتی ہے مووی، پہلی مرتبہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ مووی ابھی تک 2012 تک اس کی اینیمیٹڈ مووی بھی آئی ہے میرے خیال سے, تو 1918 میں پہلی بار آتی ہے ٹارزن آف دی ایپس, اور یہ پہلی مووی ہے جس کے اندر ایک آدمی کو, ایک شخص کو ہیرو کو نیم برہنہ دکھایا گیا. اس سے پہلے ہالی ووڈ کے اندر بھی کانسیپٹ نہیں تھا. اور اس کے بعد, اس مووی کے آنے کے بعد اور اس سیریز کے بار بار جو ہے وہ آنے کے بعد, ریلیز ہونے کے بعد, یہ کانسیپٹ آہستہ آہستہ تبدیل ہو گیا کہ ایک بڑا ماچو قسم کا آدمی جو ہے وہ ہیرو ہوگا, جیسے بہت مسکولر ہوگا, بہت طاقتور ہوگا, اور اس کی قمیض اکثر نہیں ہوگی اس کے بدن پہ. حتیٰ کہ ہم اگر جا کے دیکھیں تو ہمارے پاس ڈاکیومنٹریز ایون موجود ہیں جس میں ہم ویڈیو شارٹس دیکھ سکتے ہیں کہ جو مردانہ سوئمنگ کاسٹیوم ہوتی تھی امریکی معاشرے کے اندر, وہ تک اس طرح نہیں ہوتی تھی جس طرح آج ہے. سب کچھ مختلف تھا, یعنی ایک حیا کا عنصر ایک موجود تھا اس وقت. اور یہ ٹارزن صاحب کا کارنامہ تھا کہ آہستہ آہستہ انہوں نے جو ہے وہ کپڑوں کو کم کر دیا. بلکہ یہاں تک ہمیں 1920 کی ڈاکیومنٹریز میں ملتا ہے کہ ایک امنیتی پولیس کی طرح ساحل سمندر پہ امریکہ کے پولیس موجود ہوتی تھی, جو مرد و خواتین کے کپڑوں کو, خاص کر خواتین کے کپڑوں کو باقاعدہ انچ ٹیپ لے کے ناپتی تھی, اور اس پہ جرمانے ہوتے تھے کہ آپ نے جو ہے آپ کے
نامناسب ہیں
کپڑے. تو اس طرح آہستہ آہستہ کر کے ٹارزن صاحب نے اپنا کام کیا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 1920 کی دہائی میں ایک ویو چلی, ایک موج چلی جس کو ہم فلیپرزم کہتے ہیں, جس کو کہا گیا تھا کہ یہ فیمنزم کا جو ہے وہ کنٹینیوشن ہے, اس کا تسلسل ہے, جبکہ ایسا نہیں تھا. اس ویو کے اندر فقط فحاشی اور وہی کلچر کو جو ہے انہوں نے اپنا ٹارگٹ بنایا, اور اس زمانے میں بہت ساری چیزیں چینج ہوئیں, بہت ساری تبدیلیاں آئیں, جیسے کہ فحاشی خود, پھر اس کے بعد پھر خواتین کا سگریٹ پینا مجمع کے درمیان, حالانکہ پہلے بھی پیتی تھیں لیکن کم از کم کھلے عام نہیں پی جاتی تھیں, اس کو بہت منفی سمجھا جاتا تھا امریکی معاشرے کے اندر. ہم نے اس پہ پہلے بھی ایک بار گفتگو کی تھی کہ کس طرح اس کو, اس رسم, اس رواج کو بدلا گیا امریکہ کے اندر. تو اس میں ایک ٹول جو ہے خود ہالی ووڈ بھی تھا. یہ فلیپرزم کی ویو تھی جو 1920 سے اور 1930 کے درمیان چل رہی تھی.
کل میں نظر ماری پڑی ایک پاکستانی ویب سائٹ پر, اور اس میں بہت ہی دلچسپ چیز تھی, وہ یہ کہ پاکستان کا ایلیٹ طبقہ, بہت ہی جو امیر طبقہ ہے, وہ کیسے رہتا ہے. ان کی تصاویر اور وہ عجیب و غریب ان لوگوں کا انداز تھا کہ یعنی میں نہیں سمجھتا کہ یہ عام زندگی پاکستانیوں کی ہوگی. حتیٰ مغرب کے لیے وہ چیزیں بہت زیادہ عجیب تھیں. ہر چیز ڈیزائنر کپڑے تو ڈیزائنر, فرنیچر تو ہر چیز ڈیزائنر, اور اس کو بظاہر یہ ہے کہ خبر کے طور پر پیش کیا گیا ہے. کیا ہم اس کو, اس مسئلے کو بھی اسی تناظر میں دیکھ سکتے ہیں؟
بالکل. اس میں ایک چیز یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں انہوں نے شاید دکھانا چاہا ہوگا کہ سوسائٹی کے اندر کانٹراسٹ کتنا, ایک طرف یہ ہے ایک طرف وہ ہے. واقعی پوری دنیا کا یہی حال ہے, اور یعنی افسوسناک طور پہ پاکستان کا بھی حال ہے کہ ایک بہت خلیل سا طبقہ ہے جو کہ بہت زیادہ دولت مند ہے, بہت زیادہ ثروت مند ہے. دوسری طرف جو ہے طبقہ باقی, ہم اگر اسٹیٹس دیکھیں تو بہت اچھے نہیں ہیں. پاورٹی لائن جس کو آپ غربت کی لکیر کہتے ہیں, وہ اس کے جو اسٹیٹس آفیشیل بھی ہیں وہ بھی بہت اچھے نہیں ہیں. تو ایک طرف تو یہ کانٹراسٹ دکھایا گیا ہوگا, دوسری طرف وہی ہے کہ یہی طبقہ ہے جو ہے وہ لائف اسٹائل, وہ کلچر افورڈ کر سکتا ہے, گو کہ یہ اس کا کلچر نہیں ہے, اس کا لائف اسٹائل نہیں ہے. مغرب زدہ لوگ ہیں سارے, یہ خود وہ لوگ ہیں بیچارے جو اس ثقافتی الغار کا شکار ہیں, لیکن ان کو خود نہیں معلوم.
اثر کیا پڑ سکتا ہے عوام پر؟
اثر ایک تو وہی پڑے گا کہ ظاہر ہے ان کو دیکھ کے لوگ کاپی کرنا شروع کریں گے, کیونکہ وہ ایک ایلیٹ طبقہ ہے. اکثر لوگ, عوام جو ان کو فالو کر رہی ہوتی ہے, ان کا انفلوئنس زیادہ ہوتا ہے معاشرے پہ, تو لوگ ظاہر ہے فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اس کی وجہ سے کرائم ریٹ بھی کسی حد تک بڑھتا ہے کہ کیونکہ وہ وسعت نہیں ہوتی, وہ خریدے قوت خرید نہیں ہوتی عوام کے پاس, اور وہ چاہتے ہیں اس طرح بننا, اس ایلیٹ طبقے کے اندر آنا, تو اس کے لیے پھر کرائمز بھی جو ہم دیکھتے ہیں ان کے اندر بھی اضافہ ہوتا ہے.
بہت بہت شکریہ یوسف بھائی, اور ابھی ہم لوگ انشاءاللہ مزید گفتگو کریں گے اس مسئلے پر. ابھی چلتے ہیں خرم کے پاس اور پھر اس کے بعد اپنی گفتگو آگے بڑھائیں گے.
بہت شکریہ جی, وقت ہوا ہے ایک نعت آپ لوگ ملاحظہ فرمائیں, اور اس کے بعد پروگرام سبز زندگی کو ہم لوگ آگے. جی ناظرین, آپ لوگوں نے نعت ملاحظہ فرمائی, امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی, اور وقت ہوا ہے دوبارہ لوٹنے کا حسن زیدی کی طرف, جہاں پر گفتگو کا حصہ ہمارا چل رہا ہے. جی حسن,
بہت بہت شکریہ خرم. اور ہم لوگ بہرحال خرم, اس وقت میڈیا کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے. اگر یہاں پہ ہم لوگ بیٹھے ہیں تو پوری ذمہ داری کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں.
بالکل,
اگر کوئی بات ہم لوگ کر رہے ہیں تو ہم لوگ یہ نظر میں رکھ کے کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کے جو بہرحال سارے ہمارے بھائی بہن ہیں, وہ اگر کوئی ایک فلم بھی دیکھ رہے ہیں تو سوچ سمجھ کے دیکھیں. میں پہلے بہرحال ہر ایک جو ہے اپنے خاص دور میں جو ہوتا ہے وہ فلمیں دیکھتا رہتا ہے, وہ بہت خوش ہوتا ہے, وہ مارکوٹائی والی لڑکوں کو زیادہ پسند ہوتی ہیں, लेकिन उस वक्त नासमझी में आदमी बहुत कुछ यानी वो सब देखता है और समझ में नहीं आता है, बस तफरीह लेता है, लेकिन क्या असर पड़ रहा है उस वक्त अंदाज़ा नहीं होता है। हो सकता है आइंदा नस्लों की तरबियत में वो चीज़ सामने आ जाए, बज़ाहिर अगर उस वक्त सामने भी नहीं आई तो। इस सिलसिले में सॉफ्ट वॉर को एक आम आदमी कैसे समझे?
एक आम आदमी कैसे समझे जबकि मीडिया अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा? ये एक बहुत मुश्किल काम हो जाएगा एक आम आदमी को समझना वाकई। तो उसको सबसे पहले तो ये डायग्नोज करना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि वो एक जो है जंग उसके ऊपर मुसल्लत कर दी जा चुकी है, ठीक है। जब तक वो ये नहीं महसूस करेगा, जब तक वो इस तरफ नहीं आएगा सोचने के लिए कि उससे निकले कैसे, जब उसने जिस दिन ये एहसास कर लिया, उसको ये एहसास करने के लिए ज़रूरी है कि ऑल्टरनेट मीडिया को फॉलो करे। ऑल्टरनेट मीडिया क्या है? एक है मेन स्ट्रीम मीडिया, एक है ऑल्टरनेट मीडिया। मेन स्ट्रीम मीडिया जो हमारे मेन बड़े बड़े चैनल्स होते हैं हर मुल्क के अपने, किसी हद तक कुछ ममालिक में स्टेट कंट्रोल्ड होते हैं, किसी हद तक कुछ ममालिक में प्राइवेट होते हैं, वो एक चीज़ दिखा रहे होते हैं। उसके अलावा कुछ छोटे चैनल होते हैं, कुछ वेब इंटरनेट बेस्ड चैनल्स होते हैं, कुछ सोशल मीडिया होता है जो कि उसके अलावा एक दूसरा रुख तस्वीर का दिखा रहा होता है। कुछ ममालिक होते हैं जिनकी पॉलिसीज़ दूसरे ममालिक से क्लैश करती है, एक चीज़ वो दिखाते हैं, दूसरी चीज़ ये दिखाते हैं। तो ज़रूरी है कम अज़ कम हम दोनों व्यूज़ को सुनें, चाहे वो ख़बरें हों, चाहे वो कल्चर हो, चाहे वो कुछ भी हो, हम दोनों व्यूज़ को ज़रूर सुनें और उसके बाद सोचें बैठ के थोड़ी देर कि क्या वाकयान ऐसा ही है कि कौन सही बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, ताकि हम किसी नतीजे तक पहुँच सकें।
सन 2009 में जब यानी कैसे 22 रोज़ा जंग हुई थी, गज़ा पर मुसल्लत की गई थी, जंग तो वाकई नहीं कह सकते, नोआम चॉम्स्की जो उम्मीदवार थे, अमेरिका के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे, उन्होंने एक बात कही कि वहाँ पर फ़िलिस्तीन में कोई जंग नहीं हो रही बल्कि कत्ल हो रहा है फ़िलिस्तीनी अवाम का, क्योंकि एक तरफ के पास कुछ भी नहीं है और दूसरी तरफ के पास हर मुमकिन हथियार मौजूद है। तो सन 2009 में देखा गया कि जब वो जंग मुसल्लत की गई गज़ा पर, तो कोई उसका रिएक्शन कहीं पर भी नहीं था, बहुत ही महदूद पैमाने पर। हत्ता मैं बात कर रहा हूँ बर्रसग़ीर की, कि वहाँ पर बहुत ही महदूद पैमाने पर उसकी खबरें दी जानी थी। सन 2014 में कभी जंग चल रही है, आज नवा दिन है इस यानी कह सकते हैं कि हमलों का इसराइल की जानिब से, सहूनी हुकूमत की जानिब से, तो देखा जा रहा है कि एक बहुत ही अजीम तहरीक शुरू हो गई है, जैसे एक ख़ास किस्म की बेदारी आ गई है। क्या ये वाकई बेदारी है या एक बस जोश है, ज़ाहरी जोश है जिसे वाकई किसी तहरीक में तब्दील करना मुश्किल है?
ये खैर मैं इतना कोई पॉलिटिकल कमेंटेटर तो नहीं हूँ कि मेरी इतनी नज़र सियासियात पे हो। बहरहाल इसको ये ज़रूर कह सकते हैं इसमें मीडिया का बहरहाल एक रोल है, एक मुस्बत रोल भी है। वही ऑल्टरनेट मीडिया जिसकी हम बात कर रहे थे, जितनी अवेयरनेस क्रिएट हुई है, जितने ऑल्टरनेट आउटलेट्स बने मीडिया के, चाहे अमेरिका में चाहे पूरी दुनिया में कहीं पे भी, तो उसमें टीवी चैनल्स भी हैं, उसमें ये वेब टीवी चैनल्स भी हैं, उसमें जो है वो सोशल मीडिया ख़ुद भी है कि जिस तरह हम देखते हैं कि फेसबुक और यूट्यूब और इस तरह के वेबसाइट्स के ऊपर वीडियो शेयर होती हैं, तस्वीर का दूसरा रुख दिखाने की कोशिश की जाती है, तो इसमें आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, ब्लॉग्स हैं। सिर्फ ये नहीं कि मेन स्ट्रीम अखबार जो थे वही खबरें देते हैं, ब्लॉग्स भी जो है अपना काम करें। तो एक वॉर ठीक है कि उतनी बड़ी ताकत नहीं है दूसरी ऑल्टरनेट, लेकिन लोग क्योंकि अब उससे तंग आ चुके हैं झूठ सुन सुन के, जब उनको सच मिलता है तो लोग उसकी तरफ ऑटोमेटिकली, फितरत इंसान की इस तरह उसकी तरफ वो अट्रैक्ट होता है, खिंचता है, सच में कशिश होती है। तो हम ये ज़रूर कह सकते हैं किसी हद तक बहुत मुस्बत किरदार रहा है जितनी भी बेदारी अब तक आई है उसके अंदर।
जब एक मसला भी मैं अभी यहाँ पर भी बताता चलूँ अपने नाज़रीन को कि कल मैं ये ख़बर देख रहा था कि ईरान के बहुत ही मशहूर एक फ़ुटबॉल कमेंट्री करते हैं और फ़ुटबॉल के सिलसिले में बहुत ही महारत उनको हासिल है और अबूर हासिल है उनको। उन्होंने अभी हाल में ही जब वर्ल्ड कप हो रहा था फ़ुटबॉल का, तो उनका बयान आया कि इसके आड़ में, वर्ल्ड कप के आड़ में सहूनी हुकूमत और उस जैसी हुकूमतें कत्लेआम मचा रही हैं। कल उनके सारे यूट्यूब पर से वीडियोज़ सारे डिलीट कर दिए गए, तो कहाँ पे चोट लगी है कि ये काम किया गया है?
अच्छा, ये बात अच्छा मुझे आपने इन्फॉर्मेशन में इजाफा किया इनका बता के, मैंने अभी तक इनकी नहीं सुनी, लेकिन ये बड़ी वाजे बात है। ये वाजे बात है कि ये देखते हैं अक्सर, आप देखते हैं कि इस तरह के जो इंटरनेशनल जो बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं, दूसरे इवेंट्स जो होते हैं, उसके आड़ में बहुत सारे काम, जब दुनिया की तवज्जो एक तरफ होती है मरकूज़, उसके आड़ में बहुत सारे काम पीछे हो रहे होते हैं, ये कोई इतनी ढकी छुपी बात नहीं है। तो चोट तो सही जगह लगी है, अगर वीडियोस हटा दी गई हैं तो ये खुद अपने अंदर एक साइन है बहुत बड़ा कि चोट सही जगह लगी।
इंशाल्लाह उसके बारे में मज़ीद फेसबुक पेज पे मालूमात फराहम करेंगे अपने अजीज़ नाज़रीन को। चलते हैं खुर्रम के पास फिलहाल, और फिर
जी मेरे पास एक बहरहाल ईमेल आई है और मुझे अभी जो है अभी पकड़ाई गई है ईमेल, और इसमें जो है आमना साहिबा ने ईमेल लिखी है और बारह थोड़ी सी कन्फ्लिक्टिंग किस्म की ईमेल है, और उन्होंने कहा है कि अल्लाह ताला ने हमें अक्ल दी है, मैं जब एक फ़िल्म देखती हूँ मुझे पता चल रहा होता है कि क्या सही है और क्या गलत, फिर ये सॉफ्ट वॉर क्या है? अगर इसका जवाब दें तो पारा ये आमना साहिबा का गिला है मेरे ख्याल से हमारे साथ।
नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल
सवाल है, सवाल का जवाब
नहीं नहीं बिल्कुल जेन्युइन सवाल है, वाकई ना ऐसे ही है कि हमें अक्ल अल्लाह ने इसीलिए दी है कि हम उसको जज कर सकें क्या सही है क्या गलत है। वो लोग जो वाकई ये फहम रखते हैं, जो जज कर सकते हैं, उनसे ये सवाल नहीं है कि वो सोचें और ज़्यादा सोचें। ज़्यादा जो मसला है वो क्या है कि जैसे हमने तमद्दुन की या सॉफ्ट वॉर की बात की, जो लोग अपने तमद्दुन से, अपनी तारीख़ से, अपनी ज़बान से, अपने उस सारे कल्चर से इतने ज़्यादा आशना नहीं है उनको ज़्यादा ख़तरा है। जो लोग नस्बतन ज़्यादा आशना उनको कम ख़तरा है, इसमें कोई ऐसी इसमें गिले वाली बात नहीं है। लेकिन अच्छा सवाल था इनका। तो बहुत सारे लोग हैं जो तारीख़ से गहरी वाकफियत रखते हैं, उनको ख़तरा नहीं है, बल्कि वो इसके खिलाफ लिखते भी रहते हैं कि फ़लानी फ़िल्म, अभी तारीख़ की बात हुई, हज़रत नूह के ऊपर अभी एक फ़िल्म आई है नोहा, अभी एक हॉलीवुड ने कुछ महीने पहले ही, खाली 1.5 महीने पहले
आई है फिल्म। बिल्कुल
अगर आप उस फिल्म को देखें तो जिसने अगर तारीख़ ना पढ़ी हुई हो, जिसको नहीं पता हो कि इवन बाइबल के अंदर जो हज़रत नूह का वाक़िया है, जो कुरान के अंदर हज़रत नूह का जिक्र है, वो उससे टोटल कॉन्फ्लिक्ट कर रही है। अजीब व गरीब मुकलज़ात किस्म की एक दास्तान है जिसके अंदर विलन भी जो है वो आधी से ज़्यादा मूवी में खुद जनाबे नूह को दिखाया गया नऊज़ु बिल्लाह, कि जो खुद जो है इंसानियत के ख़िलाफ़ है, वो चाहता है कि उसको सारी इंसानियत को जो है साफ़ कर दिया जाए। अजीब व गरीब किस्म के कॉन्सेप्ट्स दिखाए गए हैं उसके अंदर। तो ज़ाहिर है ये बहुत वाज़े है हमारे अल्हम्दुलिल्लाह उस माशरे में जिधर इस्लामी वाक़ियात किस्से जो हैं वो तकरार होते रहते हैं, तो उधर तो ये बहुत वाज़े है। लेकिन वो लोग जो दीन से दूर हैं उनके लिए मुश्किल खड़ी कर सकती फिल्म, अगर इस तरह की फिल्में बार बार तकरार होंगी तो उनको लगने लगेगा शायद यही ठीक,
शायद वाकई यही ठीक। बिल्कुल, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग मालूमात हासिल करें सही ज़राए से,
बिल्कुल,
और यानी अपने मुताले में इजाफा करें जो आजकल कमी पाई जा रही है हम लोगों के माशरे में इसकी। खुर्रम और कोई सवाल?
जी बिल्कुल, अभी तो एक और सवाल भी है हमारे पास यहाँ पर ईमेल आई है, लेकिन अभी मैं जाऊँगा LCD की तरफ इंशाल्लाह, उसके बाद जो है वो सवाल भी पूछेंगे। बहरहाल बहुत अच्छे तरीके से आपने जवाब दिया, और मेरे ख्याल में जो बात यहाँ पर एक थोड़ी सी मैं भी करता जाऊँ वो ये है कि शायद एक शख्स का इल्म कम हो इन तारीख के बारे में, या जैसे कि फरमाया कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में जो फिल्म बनी है, लेकिन हमारे यहाँ होता ये कि फौरी तौर पर मान ली जाती है एक बात, ठीक है आप उसको देखें, अगर आपका इल्म कम है तो आप उसको माने ना आप, और उसके पार बारे में आप जानने की कोशिश करें ताकि आप किसी सही नुक्ते पर पहुंच जाएं, लेकिन जो है फौरी तौर पे एक चीज़ को कानून एक लॉ बना देना ये गलत मेरे ख्याल में। बहरहाल आते हैं LCD की तरफ, और यहाँ पर आज मैं आपको जो है कुछ दिलचस्प फवाइद बताऊँगा तिब के लिहाज से, मेडिकल के लिहाज से, मेडिकल क्या कहती है कि रोज़े के रमज़ान के फवाइद क्या हैं। सबसे पहली जो चीज़ है, कहा जाता है कि मुसलमान माह रमज़ान में खजूरों का इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारे दीन में भी आई है, इस्लाम में भी आई है कि जी खजूर के साथ, नमक के साथ रोज़े का रोज़े को अफ्तार करें। लेकिन उसके अलावा कहा जाता है कि खजूर बिल्कुल एक मल्टीविटामिन की तरह काम करती है, और कहा जाता है इसके 31 ग्राम कार्बोहाइड्रेट एक हर एक खजूर के अंदर पाई जाती है, जो फौरी तौर पर जब आप अफ्तारी करते हैं तो आपको एक बिल्कुल एक मल्टीविटामिन जैसे आप खा लें उसी तरह की एनर्जी पहुंचा देती है। उसके अलावा कहा जाता है कि इसके अंदर इतना फाइबर मौजूद होता है कि जब आप इसको अफ्तार में शुरू में खाते हैं, किस कोई गज़ा खाने से पहले मामूलन खाया जाता है, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि कहा जाता है, जारी बात है कि आप जो है काफ़ी घंटे तक भूखे होते हैं, आपके पेट में कोई चीज़ नहीं गई होती, तो अगर आप कोई और चीज़ खा लें तो उसकी वजह से हो सकता है कि आपका पेट ख़राब हो जाए, पेट पे जो है कोई मुश्किल पेश आ जाए। लेकिन जब आप खजूर खाते हैं, क्योंकि इसमें फाइबर की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, तो ये आपको मदद करता है कि आप जो उसके बाद एकदम से खाना शुरू कर देते हैं तो उसको वो मेदे को, पेट को आपको ख़राब नहीं होने देता। उसके अलावा कहा जाता है पोटाशियम, मैग्नीशियम और वाइटामिन बी की जो पूरी सीरीज़ है उसके सारे वाइटामिन इसके अंदर मौजूद होते हैं, जो बहरहाल वही बात जो मैंने आपको की कि एक मल्टीवाइटामिन का काम करती है। बहरहाल ये एक पहला फ़ायदा कह सकते हैं कि रमज़ान का था, क्योंकि जारी बात है हम रमज़ान में खजूर का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा ذہن کے، برین کے بارے میں، دماغ کے بارے میں کہا جاتا ہے. بہرحال آپ لوگوں کو پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، سارے کہتے ہیں کہ جی بارہ بہت فائدہ ہوتا ہے ماہ رمضان میں، کیونکہ جب کہا جاتا ہے کہ جب آپ ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہمارے سارے جو خون کی گردش ہے، خون کی سرکولیشن ہے، وہ ہمارے معدے کی طرف چلی جاتی ہے اور ذہن کی طرف، برین کی طرف آکسیجن، دماغ کی طرف آکسیجن اس طرح نہیں پہنچ پاتی جس طرح پہنچنی چاہیے. کیونکہ ظاہری بات ہے جب خون کا فلو جو ہے، خون کا فشار، دباؤ جو ہے وہ ہمارے معدے کی طرف آ جاتا ہے، دماغ کی طرف نہیں ہوتا، تو آکسیجن بھی نہیں پہنچ پاتی دماغ تک، اور اس کے ساتھ ساتھ کاربوہائیڈریٹ یا اس کی جو خوراک ہے وہ بھی نہیں پہنچ پاتی، جس کی وجہ سے ہم لوگ صحیح طریقے سے سوچ نہیں سکتے، کام نہیں کر سکتے. اگر کوئی سوچنے والا کام ہے، کوئی چیز یاد کرنی ہے، وہ کام ہم نہیں کرتے اور سستی سی چھا جاتی ہے اور بہرحال سونے کا جی چاہتا ہے یہ چیز. لیکن ماہ رمضان میں ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کچھ گھنٹے جو ہے بہرحال نہیں کھاتے، تو اس کی وجہ سے بلڈ کی سرکولیشن جو ہے، اس کا دباؤ ہمارے پورے بدن میں صحیح طریقے سے تقسیم ہو جاتا ہے، بجائے اس کے کہ صرف معدے کی طرف ہو. ایک تو اس کا یہ فائدہ ہے. دوسرا، ایک بار تحقیق ہوئی ہے امریکہ میں، اور اس میں کہا گیا ہے کہ جب روزہ جب رکھا گیا ہوتا ہے تو اس میں ایک ایسا ہارمون ریلیز ہوتا ہے ہمارے دماغ میں جو باعث بنتا ہے کہ دماغ کے نئے سیل بنے. یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے اور اس میں ریسرچ ہوا ہے، کیوں کہا جاتا ہے کہ ایک خاص عمر تک ہمارے دماغ کے سیل بنتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ وہ رک جاتے ہیں، لیکن کہا جاتا ہے کہ ماہ رمضان میں ایک ایسا نیوروٹروفک فیکٹر، اس کو کہا جاتا ہے، وہ ہمارے ذہن میں، برین میں، دماغ میں ریلیز ہوتا ہے، جس کی وجہ سے نئے سیل بننا شروع ہو جاتے ہیں. بہرحال یہ کچھ فوائد ہیں، آپ کو اور بھی فائدے میں بتاؤں گا. یہاں پر چھوٹا سا وقفہ لیں گے، اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت حاضر ہوں گے. بری عادات کو چھوڑنے کا ایک بہت بہترین موقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ماہ رمضان کی شکل میں. اور بہرحال سگریٹ نوشی ہے اور مختلف قسم کی چیزیں ہیں جو بہت بہرحال کم لوگ استعمال کرتے ہیں، لیکن بہرحال ہیں. روزہ رکھیں، کسی اور چیز کے لیے نہیں بھی رکھتے تو اس چیز کے لیے کہ آپ کی جو بری عادات ہیں آپ ان سے جان چھڑا سکتے ہیں، اس چیز کے لیے رکھیں. سگریٹ نوشی ہو اور یا بہرحال کچھ اور چیزیں بھی ہوتی ہیں، جیسے کہتے ہیں کچھ لوگوں کو میٹھی چیزیں کھانے کا بہت شوق ہوتا ہے اور وہ مٹھائی سے جو ہے جان نہیں چھڑا سکتے اور اس کی وجہ سے مختلف بیماریوں کے شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس سے بھی کہا جاتا ہے کہ جان چھڑائی جا سکتی ہے. کہ یو کے میں ایک ریسرچ ہوئی ہے نیشنل ہیلتھ سروس والوں نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جب ایک گروپ کی شکل میں کسی چیز کو چھوڑا جاتا ہے، سگریٹ نوشی کو مثال کے طور پر چھوڑا جاتا ہے، میٹھی چیزوں کو چھوڑا جاتا ہے، تو بہت آسان ہو جاتا ہے ایک شخص کے لیے اس عادت کو چھوڑنا، اس بری عادت سے جان چھوڑانا. تو یہ گروپ کی جو بات کی، یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ دیکھتے ہیں ایک اسلامی ملک میں جب سارے مل کے روزہ رکھتے ہیں تو ایک ایسا ماحول آپ کو دیکھنے میں ملتا ہے کہ آپ ایک گروپ کی شکل سی بن جاتی ہے. تو اس میں ظاہری بات ہے کہ آپ اکیلے کھڑے ہو کے وہاں پر اگر آپ نے روزہ نہیں بھی رکھا تو آپ سگریٹ نوشی نہیں کر سکتے. اور جب آپ دیکھتے ہو کہ آپ کے سارے دوست یار جو جتنے بھی لوگ خاندان میں آپ کے ہیں وہ روزہ انہوں نے رکھا ہوا ہے اور وہ ان میں اتنی طاقت ہے کہ وہ بری عادت سے بچ رہے ہیں، تو آپ کے اندر بھی وہ انرجی آ جاتی ہے اور آپ بھی اس بری عادت سے بھاگنے کی کوشش میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اور آخری چیز ایک جو میں بتا دوں وہ ہے کولیسٹرول کے بارے میں. کہا جاتا ہے جیسے کہ آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہماری نسیں ہیں ان کے اندر کے حصے میں چربی بہرحال جمع ہونے شروع ہو جاتی ہے، کولیسٹرول جمع ہونے شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک اور سٹروک اور بہت سی مختلف بیماریاں بہرحال پیش آ جاتی ہیں. روزہ رکھنے کی وجہ سے یہ سارے کولیسٹرول ہماری نسوں میں سے نکل جاتی ہے اور آپ کی نسیں جو ہیں وہ بالکل اس طرح ہو جاتی ہیں، کھلی ہو جاتی ہیں، آپ کو نہ بلڈ پریشر کی شکایت ہوگی، نہ ہارٹ کی، دل کی بیماری کی کوئی مسئلہ پیش آئے گا، اور انشاءاللہ آپ صحت مند زندگی گزار سکیں گے. چیزیں میرے پاس اور بھی بہت زیادہ تھیں، لیکن میرے خیال میں نے بہت زیادہ بات کر لی ہے. چلتے ہیں حسن کی طرف. جی حسن،
ہم لوگوں کے پاس بھی وقت کم ہی رہ گیا ہے، ہمارے ساتھیوں نے بتایا کہ بس 2-3 منٹ اور ہیں، تو اگر آپ آج کی گفتگو کا ایک خلاصہ بتانا چاہیں.
خلاصی گفتگو تو ساری ہم پہلے کر چکے ہیں
جی،
اور وہ گفتگو رہ گئی کہ جس میں پوائنٹ آؤٹ کرنا تھا کہ کیا کیا چینجز آتے رہے، جس طرح ہم نے ابھی ٹارزن اور خالی فلیپرزم کا ہی ذکر کیا 1920s میں، 1933 میں ہم جلدی سے ایک اور ہلکا سا دیکھ لیتے ہیں کہ اور کیا کیا جو ہے نقصانات پہنچائے معاشرے کو ہالی ووڈ میں، اگر خالی بات کریں اور میڈیا کو چھوڑ دیتے ہیں. تو 1933 کے اندر شراب نوشی جو ہے وہ، اور شراب کی تولید اور شراب کی برآمد جو ہے وہ، اور درآمد جو ہے وہ اپروو ہو جاتی، لیگل ہو جاتی ہے امریکہ کے اندر. اس سے کوئی تقریباً 15 سال قبل یہ تحریک شروع ہوئی تھی، ہالی ووڈ کے پردوں پہ، سنیما کے پردوں پہ دکھایا جا رہا تھا شراب نوشی کو. بہرحال اس کو وقت لگا آہستہ آہستہ آہستہ، یہ ایک واحد فیکٹر نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے وہاں پہ یہ لا پاس ہو گیا 1933 میں، بہرحال ان فیکٹرز میں سے ایک اہم فیکٹر. जंप मारते हैं आगे बहुत जल्दी से, एक अहम और एक तिहाई है वो है 1960s का एंड है और 1970s का शुरू है. इसमें एक हमने एक फिनोमेना देखते हैं एक अमेरिका के अंदर जिसको आप कहते हैं वुडस्टॉक एक के नाम से कॉन्सर्ट हुआ था 3-4 रोज का, जिसके अंदर बेसिकली कुछ लोग जमा हुए थे, कुछ बैंड्स जमा हुए थे जिसका मकसद ये था कि निज़ाम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं. तो उनको एक शक्ल दी गई कि जी अगर आप निज़ाम के ख़िलाफ़ हैं, आप इस लाइफस्टाइल के ख़िलाफ़ हैं, तो आप इस तरह ज़िंदगी गुजारें. तो उस ज़माने में बहुत सारे प्रोडक्ट्स नए नए आए उस तरह के, और हिप्पी लाइफस्टाइल जिसको आप कहते हैं जिसमें एक बेरा रवि होती है, वो उसको प्रमोट किया गया और वो आया उस ज़माने में 1960s के एंड में और 1970s. ये असलन शुरू हुआ था वियतनाम वॉर के अगेंस्ट, कि जब लोगों को ये पता चलना शुरू हुआ कि हम जो है वो दखालत कर रहे हैं उनके दाखिली उमूर में और हम ज्यादती कर रहे हैं उनके साथ, तब शुरू हुआ था. तो उसके ख़िलाफ़ फिर एक वेव चली. इस पर भी अब ज़्यादा बात करने का टाइम नहीं. आखिरी बात, इस वक्त जो एरा चल रहा है अगर हम इसको मकतब फ़िक्र की नज़र से देखें फिल्मों के अंदर हॉलीवुड के अंदर, इसको कहते हैं ट्रांस मॉडर्निज्म. ट्रांस मॉडर्निज्म इससे पहले चल रहा था पोस्ट मॉडर्निज्म. इसके अंदर क्या हुआ है, अब इसके ऊपर बात करने का वक्त नहीं बचा कि होता क्या है, लेकिन इसका एक रिज़ल्ट मैं आपको बताऊं. जो सवाल जिस तरह का हमारे पास आया था, ज़रूरी है कि इसका जवाब इस तरह भी दिया जाए. इस फिल्म के अंदर हम देखते हैं कि अब जो 2000 ऑनवर्ड जो फिल्में बन रही हैं पिछले 14-15 साल में, उनके अंदर जादू और अजन्ना और इस तरफ बहुत ज़्यादा रुझान है, जिसमें हम बहुत सारी हैरी पॉटर्स की सीरीज़ देख सकते हैं, हम लॉर्ड्स ऑफ द रिंग देख सकते हैं, हम हॉबिट देख सकते हैं, हम नार्निया देख सकते हैं. ये जो सारी मूवीज़ बन रही हैं किस तरफ ले जाना चाह रहे हैं, तो ये अजन्ना और जादूगरी और इस तरफ ये जो रुझान आया है इसको हम कहते हैं इस मकतब को. तो इसका पोस्ट मॉडर्निज्म और ट्रांस मॉडर्निज्म की जो इस मकातब की जो फिल्में हैं, इसका एक जो मनफी असर मैं अपने हम इस्लामी माशरे में देखते हैं, मुसलमान लोगों में से बातचीत करके अंदाज़ा हुआ ये कि बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि इंसान से अशरफ एक मखलूक जो है वो एग्जिस्ट करती है, शायद वो एलियंस हैं और जनाब वो हमसे बेहतर हैं, बरतर हैं, जबकि ये जो हमारा मानना है ये बिल्कुल हमारी दीनी तालीमात के ख़िलाफ़ है. क्योंकि अगर इंसान अशरफ मखलूक ना होता तो खुदा कभी भी इंसान को आदम अलैहिस्सलाम को सजदा ना करवाता
बिल्कुल
फरिश्तों से.
बेशक.
तो इस तरह करके आहिस्ता आहिस्ता हमारे कॉन्सेप्ट्स चेंज हो रहे हैं. तो ये वो नुक्ता था जो वाजे करने की कोशिश कर रहा था मैं जंग नर्म के हवाले से.
इंशाल्लाह अगले हफ्तों में भी इस हवाले से हम लोग गुफ्तगू करेंगे. एक नुक्ता आखिर में मैं ये बताना चाह रहा था कि 2 हफ्ते तकरीबन 10 दिन पहले मेरी नज़र पड़ी इंटरनेट पर ही, वेबसाइट भी जहाँ तक मुझे याद है यूरोप की कोई वेबसाइट थी, और उसमें ये कि मुसलमानों से उसका कोई ताल्लुक नहीं था, और उसमें बहुत ही मज़ेदार नुक्ता दिया हुआ था कि मौजूदा मशहूर अफराद में कौन एथीस्ट यानी जो दीन के ख़िलाफ़ हैं कौन है वो लोग, और उसमें बड़े बड़े नाम थे जेम्स कैमरून से लेकर जो बहुत ही मशहूर हैं, शायद कह सकते हैं मशहूर तरीन डायरेक्टर हैं इस वक्त दुनिया के, और बहुत बड़ी बड़ी
हाँ
और बहुत ही इस तरह की मशहूर, और बहुत यानी मिसाल के तौर पर मैट्रिक्स फिल्म के जो कियानो रीव्स थे, और इसके अलावा और बहुत सारे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस, हत्ता यानी जो आपने हैरी पॉटर का नाम लिया जो मेन किरदार जिस हैरी पॉटर का था, ये लोग सब उसमें लिखा हुआ था कि ये लोग खुदा को न सिर्फ ये कि नम नहीं मानते बल्कि खुदा के ख़िलाफ़ हैं. तो ये बहुत ही अहम नुक्ता हम बताना चाह रहे हैं आजकल के नौजवानों को, वाकई होशियार हो जाना चाहिए, हम लोग को समझना चाहिए. तो चलते हैं हम लोग खुर्रम के पास.
बहुत शुक्रिया हसन, मैं यूसुफ रिजवी साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वह तशरीफ लाए और बहुत ही अहम मौजू पर हमने गुफ्तगू की. छोटा सा वक्फा लेना हमने यहाँ पर और उसके बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे. हमारे साथ रहिए जी. नाज़रीन आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में, और बहरहाल हमारा इस्लामाबाद स्टूडियो से स्काइप से रब्ता नहीं हो सका कुछ फनी मसाइल की वजह से, लेकिन मलिक गज़नफर साहब हमारे साथ फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं. सलाम अर्ज़ करता हूँ आपकी खिदमत में.
हेलो,
आवाज़ आ रही मलिक गज़नफर साहब आपकी? जी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, बहरहाल आपने वक्त दिया, माजरत के साथ बहरहाल स्काइप के जरिए आपसे रब्ता नहीं हो सका हमारा. गज़नफर साहब आप बहरहाल शायर भी हैं और हमारे पास वक्त भी कम है, मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा कोई अगर अशार आपने अगर तैयार किए तो वो हमारे नाज़रीन की खिदमत में पेश कर दें.
जो
जी जरूर थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा. शुक्रिया.
जी जी उसमें मैं बात करने वाली है बुनियादी तौर पर. हेलो
जी जी गज़नफर साहब आवाज आ रही है आपकी?
आवाज आ रही है
जी. अच्छा गज़नफर साहब ماہ رمضان ہے اور اس کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا اثرات آپ کو دیکھنے ملتے ہیں ایک ماہ رمضان کے دوران ایک معاشرے پہ؟ جی ہم کوشش کریں گے دوبارہ آپ سے رابطہ کرنے کی۔ جی بالکل انشاءاللہ،
معاف کیجیے گا غضنفر صاحب، اور ناظرین ہم بھی آپ سے معذرت خواہیں کہ بہرحال بعض وقت یہ فنی مسائل کی وجہ سے ہو جاتا ہے، ہم لوگ گفتگو ویسے لمبی ہو گئی تھی۔
اچھا ایک سوال بڑا دلچسپ قسم کا حسن ہمارے پاس آیا اور وہ بارے میں یوسف صاحب سے پوچھنا چاہ رہا تھا، پوچھ نہیں سکا، اور بہرحال میرے خیال سے پہلے بات ہو چکی ہے، اور ان میں یہ اس نے سوال یوں آیا ہے کہ ہالی ووڈ فلمیں بناتا ہے اور ہم یہاں پر اپنوں کی گاڑیاں جلا دیتے ہیں، یہ بڑا دلچسپ سوال ہے اور اس کے اوپر جو ہے بات ہونی چاہیے۔
بے شک اس میں وہی جو ہم نے آج سے ایک دو دو تین ہفتے پہلے کہا تھا کہ ایران کے بہت ہی مشہور ڈائریکٹر ہیں جو اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ فلم بنا رہے ہیں، آخری مراحل میں میرے خیال میں تھوڑے دن کے اندر یعنی آ جائے گی سینماز میں۔ انہوں نے ایک بات کہی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ جب رسول اکرم کے خلاف فلم بنی تھی پہلے بار، بہت ہی یعنی اس میں کوشش کی گئی تھی کہ ویسے جس بنانے والے نے اپنی بے عزتی اس میں کر دی کہ وہ کسی بھی فلم کے معیار پہ نہیں اترتی تھی وہ فلم، کہا کہ بہت سارے لوگ سڑکوں پہ آ گئے اور ان لوگوں نے ماحول فراہم کر دیا کہ کچھ لوگ آ کے امبیسیز کو جلائیں اور دوسرے ممالک کے اور اپنے مفادات کو نقصان پہنچائیں۔ کیا حالانکہ اگر کسی کلچرل کوئی اٹیک ہوا ہے، اگر کوئی ثقافتی حملہ ہوا ہے، اس کو ثقافتی طریقے سے اس کا جواب دینا چاہیے، اور ہم میرے ذہن میں اسی لیے یہ چیز آئی کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات طیبہ کے بارے میں فلم بناؤں، تو یہ ہم لوگ اگر ذہن میں رکھ لیں کہ جس طرح حملہ ہو ہم اسی طرح اگر جواب دینا ہے، ایک تو ہم لوگوں کو آگے ہمیشہ رہنا چاہیے کہ جواب دینے کا موقع ہی نہ آئے، بلکہ ہم لوگ اپنے دوستوں کی، اپنے یعنی بزرگوں کی شخصیت کو ہم لوگ خود متعارف کروائیں،
ظاہری بات ہے تب جا کے پتہ ہونا چاہیے ان کے بارے میں، ہمارے پاس علم ہونا چاہیے کہ اگر کوئی سوال پوچھے تو ہم آگے اس کو جواب دے سکیں۔ بہت شکریہ حسن، ناظرین شکریہ ادا کرتا ہوں، بہرحال آپ لوگوں نے آج کا پروگرام بھی ملاحظہ کیا، اور میں صرف ڈاکٹر شبر علی ہمارے ساتھ کل انشاءاللہ ہوں گے، اور ہفتے کا موضوع ہمارا شب قدر کے سلسلے میں وہ ہمارے ساتھ بات کریں گے، انشاءاللہ نچوڑ نکال لیں گے ہمارے ہفتے کے موضوع کا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، کل تک کے لیے مجھے خرم گردیزی اور حسن زیدی کو اجازت۔